विशेष मतावेश प्रवेश वशत महान तनुस्वरूप निर्माण परिमाण भवोदय शिव तत्व त्रिदा भूते स्वच्छा कल कला कले सकले च समासक्त तत्त रूप परूपणम सामर्थ्य कंड सामर्थ्यम सतते ज्ञान वीर्यता। विशेष ममता आवेश, जब इस संसार को देखते हुए किसी साधक विशेष में विशेष रूपेण ममता का आवेश हो जाते, यही मेरा है, यह सब कुछ मेरा है, क्योंकि ये मुझसे ही पैदा है, अतएव सब मेरा है। जैसे एक परिवार जो खुद से पैदा हुआ को अपना मानता है, ऐसे सारे संसार को अपने से पैदा हुआ इसलिए सब संसार मेरा है मानता। विशेष ममता का आवेश का प्रवेश होने से पश्चतः तनु स्वरूप निर्माण परिमाण भवोदय, तब क्या होता है, अपने शरीर से आरंभ करके और उसके अनुरूप ही तनु के स्वरूप के सदृश स्वरूप वाले अनेक शरीरों का निर्माण करता है, विरूपों का भी शरीरों का निर्माण करेगा, स्वरूप विरूप सकल शरीरों का निर्माण कर लेता है। परिमाण भवोदय निसीम, कितनी वो अपरिमाण दीर्घ न वहां पर निर्माण अपरिमाण में अपरिमित संख्या में भी उत्पन्न कर सकता है। ये शिव ने अनंत जगत पैदा कर दिया, वह साधक भी अनंत सृष्टि बना सकता है, वह सब भी महान होंगे, कोई घटिया नहीं होगा उसकी सृष्टि में, हर चीज महान होगा। इन क्रोधावेश बनाई चीज तो घटिया हो जाता है, विश्वामित्र जो क्रोध में बनाया है सब घटिया ही है, बेगुण बना दिया, बिना गुण है, कोई गुण ही नहीं उसमें, इसका नाम है रख दे बेगुण। इन लोगों को ही प्रिय लगता है, आश्चर्य, जो तमोगुणी पदार्थ होते हैं लोगों को ज्यादा प्रिय लगता है, लगता है लोगों के स्वभाव समझ में आ जाते हैं, कैसे लोग कहो कद्दू बनाया जिसको काशीफल कहते हैं, वो हर भंडार में वही बनता है, साधुओं को पाए लोग भी बनाते बढ़िया काशीफल की सब्जी, बढ़िया बना, वो फल भी खराब होता नहीं है, रख दो साल भर चलते रहेगा, दो दो के घर निकालते रहो, कभी कभी खाते, योगी बना रहा है सात्विक विचार से बनाता है, इसलिए सब सृष्टि इसकी महान ही होगी, और कैसा होगा वो, कितने प्रकार का बना सकता है, वो सब कुछ बना सकता है, बता रहे देखिए कैसे कैसे चीजों बना सकता है, स्वच्छा कला 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 सकल इस तीन प्रकार के त्रिधा भूते शिव तत्व समा सकता, तीन प्रकार से वह शिव शिव तत्व इस संसार में हमें दिखाई दे रहा है। एक का नाम है स्वच्छा कला, सदा अद्वैत भाव में रहने वाले अभेदवादी, दूसरे हैं कलाकल माने भेदाभेदवादी, भेदाभेद में निष्ठा बनी रहती, तीसरे हैं सकल कला सहित भेदवादी द्वैतवादी, तीन प्रकार के कोटि के संसार में लोग मिलेंगे, या भेदवादी हैं या भेदाभेदवादी हैं या भेदवादी हैं, इन तीनों ही प्रकार की सृष्टि को बना सकते, इसलिए तत्त रूप उपरूपणम, तत्त रूपों का वह उपरूपणम उसका निर्माण कर सकता है, स्वच्छा कलादि रूप से उसका निर्माण वो कर सकता है, सामर्थ्य ऐसे करने में सामर्थ्य अखंड सामर्थ्य सतते ज्ञान वीर्यता। और इस तरह से शिव तत्व का साथ अपने आवेश के वजह से सामर्थ्य मैंने उसका आवेश जन्य सामर्थ्य की वजह से, साधारण सामर्थ्य नहीं है, शिवोहम ऐसा आवेश के कारण से उसके अंदर सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य भी जो होता है वह घटने वाला नहीं है न बढ़ने वाला है, वह अखंड रहता है, ऐसे अखंड सामर्थ्य को इस्तेमाल करता हुआ वह सतते ज्ञान वीर्यता भवती, वह नित्य निरंतर विद्यमान सामर्थ्य से वह ज्ञान में उसकी अद्भुत शक्ति का लाभ सदा होते ही रहता है। ज्ञान का ह्रास कभी नहीं हो सकता, ज्ञान की वृद्धि और स्वरूप पर्यंत की वृद्धि होती रही। ठीक है, इमं संसारम प्रति विशेष ममता यह आवेश। विशेष ममता का आवेश का मतलब क्या? तादात्म भावना, मैं शिव हूं और शिव ही यह जगत होने से यह सब मैं ही हूं, क्योंकि हम मेरे ऐसा जो निश्चय कर लेता, जो मेरा है वह मैं ही हूं, अतएव मेरे का नुकसान किसी को इष्ट नहीं होता, वो खुद का नुकसान मान बैठता है। यानी जो मेरा है ऐसा जिसको मान लिया उसका कोई भी नुकसान होगा वो खुद का नुकसान मानता है, कि जो मेरा होगा वो मुझसे अलग नहीं होगा। ऐसी भावना का आवेश सारे संसार के विषयों के प्रति जिसके अंदर होगा, तस्या प्रवेश वशात, ऐसी भावना जिसके अंतकरण में प्रविष्ट होकर रहता है, उसके वजह से तनु स्वरूप निर्माण अपरिमाण भवोदय। स्वकीय शरीरान रूपम, तनु स्वरूप माने स्वकीय शरीर के अनुरूप यन निर्माणम माने अपरिसीमम, कितना निर्माण करेगा? एक दो दस बीस माने असीम कर देगा। तदीव उसके समान में निस्सीम संसार से उत्पत्ति भवती, जैसा शिवजी ने बना रखा है अनंत संसार, वैसे वह भी अनंत सृष्टि बना सकता है। योगी शिव योगी सच उदय, और वह उदय भी महान इति जायते, महान करके कहा जाएगा, उसने जो भी करेगा वो महान कार्य ही होगा। ये आजकल भी देखते जो महात्मा लोग बड़े बड़े काम करते थे, अब उदय उतना महान कार्य कौन कर सकता है? महात्मा के सर कोई दूसरा कर नहीं सकता। इस ऐसे महान कार्य करने से गृहस्थ भी क्यों ना, उसको भी महात्मा कह देंगे आप। गांधी जी को महात्मा क्यों कहते? इसलिए कहते, महान कार्य किया होगा, सारे देश की जनता की आवाज जगाना कोई साधारण बात थी, इतनी बड़ी सत्ता के खिलाफ। लेकिन एक लक्षण, सारी दुनिया को जगाना, देश भर की एक आवाज बना देना, कहीं विरोध है ही नहीं, एक ही आवाज पूरे देश की निकली, एक आवाज बनाया था उन्हें, कम बात। मदन मोहन मालवीय देखिए कहां कहां से लोगों से पैसा मांगा, और कैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ा कर दी उस जमाने, बीएचयू, उनको महात्मा कहते थे। ऐसे महान कार्य करें, और साहेब बाबा को देखो क्या क्या बना दिया, यूनिवर्सिटी खड़ा कर, मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज, वो कॉलेज, गरीबों के लिए क्या नहीं कर दिया, अरबों रुपया बहा दिया। कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है ना? सरकार भी नहीं कर पाती, उसे ज्यादा कर दिखा दिया। ऐसे भी तो महात्मा कहेंगे ना, महान है। और योगी भी जो भी कार्य करता है इस तरह से सृष्टि में, सर्वहित में ही करेगा, अपने स्वार्थ में नहीं, इसलिए कार्य महान ही होगा। क्या किंचित स्वार्थ को लेकर करोगे वो बात तक खत्म कर देंगे, स्वार्थ आप करेंगे वो कार्य महान होगा, और अनेकों लोग उसको याद कर, बहुत पीढ़ी पीढ़ी तक याद करेंगे। इसे इनका कहना है कि देखो उसकी जो कार्य है वो उदय जो होगा, उदय मैंने कार्य वो महान जायते। योगी उपासको वा, है ना, ये सब किसकी बात हो रही है? चाहे योगी हो चाहे उपासको, जो आणोमल वाला मानना है, आणोमल इसमें विचार करके देखना है, जो आणोमल मात्र वाला सर्वोत्कृष्ट अधिकारी होता है, जिसमें मायामल जुड़ गया उसे निकृष्ट अधिकारी हो गया, उसमें कार्ममल भी जुड़ गया और निकृष्ट। इसलिए यह विचार जो कर रहे हैं शुरू में केवल आणोमल वाले की बात कह रहे हैं, उस योगी उस उपास ज्ञानी की वगैरह की चर्चा हो रही है जो केवल एक ही मल वाला है, दो मल उसने क्षीण कर लिया है अपने साधना से, चिंतन से, जाप से, तप से वगैरह से, तभी निर्माण शक्ति की बात हो रही है। नहीं तो एक मल वाला, तीनों मल वाला युक्त वाला हो तो कहां से आएगा ये सामर्थ्य? तो हो ही नहीं सकता, साधारण पुष्प हो तीनों मल। टीका विस्तार पर बताएंगे। देखिए, योगी उपासको यदा जब वह स्वच्छाकल कलाकल सकल रूपे त्रिधा भूते त्रिविध रूप उपलब्ध विभक्ते शिव तत्व समासक्त, सभी में समासक्त हो गया ये, ऐसा शुद्ध अंतर्गण वाला ही तो हो सकता है ना। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव है सबको मैं हूं समझने की सामर्थ्य ऐसा शुद्ध अंतकरण में ही हो सकता है, साधारण और मध्यम अंतकरणों में नहीं हो, तो समा सकते हैं उन सभी में। मैंने तादात्म्यवान अभिनिवेशी वा, तादात्म्य कर लिया है या उनका अभिनिवेश कर रहा है ऐसा मैं हूं करके, तदा जब ऐसा करते योग्य उपासक तदा तस्य उसी के अंदर एतादृश अनंत सृष्टि बनाने का सामर्थ्य आने के साथ साथ तत्त्व रूप पुरूपणम भवती, वह इन सभी रूपों को भी बना सकता है। स्वच्छाकल को भी निर्माण करेगा, कलाकल को भी निर्माण कर सकता है, सकल को भी निर्माण कर सकता है। शिव ने बनाया स्वच्छा कला रूपम तस्य भवती तद यथा परम शिव एव लीला विलासाद आत्मानं संकोचयन नाना रूपेण कर्तृ कर्म क्रियाद रूपेण आत्मानं प्रणमयति। पहले कैसे हुआ तो बताओ, शिव ने जैसे किया वैसे योगी कर सकता है बोल रहे हो ना, तो शिव ने कैसे किया पहले वो बताओ। तो सुनो, परम शिव एकमेव अद्वितीय था, वह लीला विलास, लीला विलास के वजह से क्रीड़ा करने की इच्छा अपने आप का संकोचन, अपने परमानंद रूपता में कुं किंचित आनंद में संकोच लाया, न्यूनता लाया आनंद में, जानकर ज्ञान में कमी करी, उससे क्या हुआ, नाना रूपेण कर्तृ कर्म क्रिया आदि रूप से वो अपने आप को भाषित होने लगा, प्रतिभाषित करा दिया। परिणमयति निजंदे आणव माय कारुमलैर, आ गया ना, आणवमल वाला बन गया कुछ, और कुछ आणवर माई दो मल वाला हो गया, और कुछ आणव माई कर्म तीनों मल वाला हो गया, हो करके आत्मानम आवृत्य इन मलों के तरह अपने आप को ढक लिया, ढक करके सब विभिन्न प्राणी रूपेण क्रीडन आस्ते, और विभिन्न प्राणी रूप से खेल खेलता हुआ वही परम शिव अब भी उस रूप में है। तेषु कश्चित प्राणी, उनमें से कोई प्राणी एक से मल से पात्रम भवती, एक मल का पात्र है, कश्चित मल द्वयस्य कोई दो मल वाला पात्र है, कश्चित चो त्रिविधस्य भी तीनों मल वाला है। ये कला कहां से आ गई, अरे कला में संकोच, उस परमानंद रूपा परम शिव का संकोच होना ही कला है, वही इसलिए पहली शक्ति है कला शिव से पंच सुशक्तिशु प्रथमा शक्ति ही पहली शक्ति है, साथ जीवस्य परिमित क्रिया सामर्थ्य रूपा, और कुछ नहीं है, इस जीव का परिमित क्रिया सामर्थ्य रूप का नाम ही कला है। और उन कलाओं का साथ जो रहे उसका नाम कला, जो कला के साथ है वो कला, कैसे कलाओं के साथ रह रहा है वो, उसके आधार पर उसका नाम भी अलग अलग हो गया, स्वच्छा कल कला कल सकल नाम। स्वच्छाकल किसे कहा जाता है, स्वच्छाकल स्थावत आणो मलेन अत्यल्प संस्पृष्ट सर्वोत्कृष्ट प्राण, आणो मल से थोड़ा सा छुआ हुआ है, थोड़ा सा आवरण, हल्का हल्का आवरण है, बहुत हल्का सा आवरण है, अतएव सर्वोत्कृष्ट प्राणी है स्वच्छाकल। साच शिव शक्ति और अभेद भूमिकायां तिष्ठति, और शिव की अभेद भूमिका या शक्ति की अभेद भूमिका में रहने वाला है, और जो शिव का अभेद भूमिका में रह रहा है उसका नाम हो जाता है सांभव, और शक्ति का अभेद भूमिका रहेगा उसका नाम हो जाता है शाक्त। आगे लिख रहे, शिवा भिन्नश्चेत सांभव इति, शक्ति भिन्नश्चेत शाक्ति च सौ कर्तव्य। अतः परम, उसके बाद हो गया कलाकल। कलाकल किसको कहते हैं, स्वच भेदाभेद भूमि अध्यास, भेदाभेद भूमि में टिका हुआ रहने वाला है ये सच, और वह वर्गो आणव माय मल द्वयन युक्त भवति, और यह वर्ग में जो भी प्राणी है वह आणव मल और माय मल रूपा दो मल से युक्त है। ये भी नहीं सिद्ध पुरुष लोग है, इसलिए दो ही मल है ना, कारण मल जब तक नहीं आती तब तक जड़ता नहीं आती, जड़ता का कारण ही हमारे कर्म रूपम मन, जब कर्म मल का प्रभाव बढ़ता है आदमी जड़ता की ओर जाता है, तब तक वो सिद्ध पुरुष है। ये भी इसलिए छह प्रकार के सिद्ध पुरुष हो जाएंगे भेदा भेद वाले, उनका नाम है मंत्र महेश्वर, मंत्रेश्वर, विद्वेश्वर, विज्ञान कल प्रलया कल स्तर भेदेन षड विधा प्राणिन कलाकल वर्गे समाविष्टा। इस कलाकल वर्ग में छह प्रकार के प्राणी समाविष्ट है। हमने सूत्र का संक्षेप में लिखा था ना, उसमें लिखा था आपको सात प्रकार के जीव में से इच्छा को लिया था वहां पर अनंत वाला सकल है लास्ट, जिसमें कारम बल भी है उसका नाम सकल। सात प्रकार के कला की चिड़ गंदगी से रहने वाला, साफ रहने वाला, सब प्रकार का मलयुक्त है। सकलश्च अंतिमो वर्ग, सकल कौन है? अंतिम वर्ग है, वो भेद निष्ठ होता है। पहले वाला भेद हो गया, दूसरे वाला भेदाभेद, और तीसरा वर्ग जो है ये अभेद निष्ठ है। इस कुल आठ प्रकार का प्राणी हो गया। पहला वाला प्राणी तो जीवन मुक्त है, पहला वाला प्राणी जो स्वच्छाकल है वो तो अभेद में निष्ठा है, वो तो जीवन मुक्त है। और बीच में जो छह है ये सब सिद्ध पुरुष है, जीवन मुक्त नहीं है ये सब। इनमें दो मल है, माया भी, माया का चक्कर में ये लोग, माया से बाहर नहीं है, इसलिए ये जीवन मुक्त नहीं हुए हैं। यदि हम सिद्ध सिद्ध पुरुष लोग इसलिए कहा जाते हैं इन लोगों को, मंत्र महेश्वर से लेकर के सभी के सभी जो प्रज्ञान अकल तक, ये सब उनके माया रूपी जो मल में तारतम्यता है, थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, ये छह प्रकार का गिना गया। इनके अंदर वृद्धि सिद्धियां जो होती है उनमें संख्या बढ़ती घटती रहती है, कम बेसी वाले लोग सिद्धि है, सब सिद्ध पुरुष है, क्योंकि वो भेदाभेद में रह रहे हैं, पूर्णतया भेद में नहीं, पूर्णतया भेद में भी नहीं, बीच में लटके हैं, सब भेद में। लक्ष्मण का भेद तो है, इनसे भी निष्ठा नहीं बनी, क्योंकि इधर से पूरा विरक्ति भी नहीं है भेद से, और क्या लगभग। अत्र अत्रस्ता प्राणी न आणव माय कार्म त्रिविर मलयुक्ता भेद भूमि मध्य तिष्ठंती। और जो तीसरे वर्ग है सकल वाले, ये प्राणियों में आणो माय कर्म तीनों मलों से ये युक्त होने के कारण से ये भेद भूमि सदा अधिष्ठित रहते हैं। इमे प्राणी न संसार जीवा, इन्हीं प्राणियों को संसार के जीव कहा जाए, संसारी जीव कहा जाता है। ये सब प्रकार के जीव परम शिव से ही जैसे हुए हैं, योगी इस प्रकार के सभी जीव बन सकता है। शिव तत्व से सामर्थ्य कैसे बन जाएगा लेकिन योगी, क्योंकि शिव तत्व का जो सामर्थ्य है वह योगी का सामर्थ्य हो जाता है। क्यों? वह योगी शिव से अपने आप को अभिन्न मान रहा है, आवेश सामर्थ्य का, शिव तत्व का जो सामर्थ्य है उसका आवेश योगी में हो गया। और भी आवेश कैसे हुआ? थोड़ा बहुत आ गया है क्या? कहते ना अखंड सामर्थ्यम कदापि अनश्वर शक्ति आलभ्यते योगिना, कदापि अनश्वर शक्ति को प्राप्त कर लेता है योगी। अतएव सतते सामर्थ्य आवेश से निरंतरीय सती, वह सामर्थ्य का मन आवेश का निरंतरीय होने के कारण से ही उसे ज्ञान वीरता भी उत्तर उत्तर बढ़ते जाता है। ज्ञाने अद्भुत शक्ति लाभ भवती, ज्ञान में अद्भुत शक्ति लाभ उसको होते रहेगा। ये यह उत्कृष्ट योगी का वर्णन हुआ, जो कि ये कैसा है, सच्चाकल वाला योगी है, एक ही मल है आणव मल, जीवन मुक्त है, प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाए वो परम शिव हो जाए। उनमें तो ज्यादा प्रारब्ध है, उनका संचित भी पड़ा हुआ है, उनका संचित नष्ट भी नहीं हुआ ना, जीवन मुक्त के तो संचित कर्म नष्ट होते हैं। वो स्वाम्ब और शाक्त को तो कहा इन्होंने सच्चाकल, और कौन है सांभव और शाक्त है, उन्हीं को कहा जाता है जो है स्वच्छाकल, केवल आणवमल वाले, ये सब जीवन मुक्त पुरुष। उस स्थिति को पाने का साधन भी बता दिया, अद्वैत चिंतन कैसे करना है, शिव ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई छह ही नहीं, ये चिंतन आदि साधन भी बता दी थी सांभव और शाक्त वाला, वो उन्हीं को यहाँ पर बता दिया, वही योगी यहाँ पर है। आणवमल वाला केवल होने से वो अवस्था पहले वर्णन किया गया, और यहाँ भी सर्वोत्कृष्ट जीव के रूप में उसको वर्णन कर। ईशे समग्र कर्तृत्व सरस्वत्या मनु उत्तम प्रमेये ममता आवेशात निर्मिणोति नवम जगत। ईशे समग्र कर्तृत्व, ईश्वर तत्व में समासक्त योगी के अंदर भी सर्वकर्तृत्व आ जाता है, जो मैं ईश्वर भाव में ईश्वर के साथ आ गया, अभी शिव नहीं अभी ईश्वर में आ गया, और नीचे मायामल वाले जितने भी सब ईश्वर से तादाद में रहते हैं, इसमें सारी रीति सिद्धियां होती है। इसने ईश्वर में तात्म्य अपने आप को कर लिया, इसलिए उसके अंदर क्या होगा, सर्वकर्तृत्व सामर्थ्य आ जाता है। और उसकी अमोघ वाणी के द्वारा, सरस्वती मैंने वाणी रूप साधन के द्वारा, मैंने ईश्वरीय वाणी में वो समासक्त जब हो जाता है, समावेश कर जाता है अपने व्यक्तिगत चेतनता को ईश्वरीय वाणी के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसको संसार भर के सकल मंत्रों का ज्ञान रहस्य हो जाता है, सर्व महंत्र रहस्य ज्ञान हो जाता है उसको। मनोत्तम, मनो मने मंत्र, उसमें जो उत्तम है वो हो जाता है, मन मंत्रेश्वर हो जाएगा। मनोत्तम मंत्रेश्वरो भवती योगी, तब योगी मंत्रेश्वर मंत्र महेश्वर, ये दो टाइप है ना, मंत्र महेश्वर और मंत्रेश्वर, इनमें भी तारतम्य होते हुए दो रूप प्रकार को योगी हो जाता है। देखो घट गया ना, भी स्वच्छा का वर्णन हो रहा था पूर्व तक, तो वहां से अब आ गया मंत्रेश्वर मंत्र महेश्वर में निचले कोटि में। टीका इसका, ईश्वर है ईश्वर तत्व, ईश्वर मैंने ईश्वर तत्व, समासक्तो योगी, समासक्त मैंने समावेश को प्राप्त हुआ, समावेश का मतलब क्या होता है पूर्ण वर्णन कर चुके हैं, अपने व्यक्तिगत वैयक्तिक चेतना को ईश्वरीय चेतना के साथ एक कर लिया, उसका नाम समावेश कर लेना, समासक्त होना, ऐसा योगी समग्र कर्तृत्व लभते है, सर्व कर्तृत्व की प्राप्ति उसे हो जाएगी। इतना ही नहीं, साथ साथ जब ईश्वर समासक्त हो जाएगा तो ईश्वरीय वाणी के साथ भी समासक्त कर लेगा। सरस्वत्या मैंने वाणी रूप साधने ना, मैंने वाण्याम समावेश, ईश्वरीय वाणी के साथ वो समावेश कर गया, एकदम वो प्राप्त कर जाता है। ईश्वरीय वाणी में कौन सा मंत्र नहीं है, अब उसके साथ तादात हो जाने से उसको भी सकल मंत्रों का ज्ञान हो जाता है। मनवह मनुत्तम मैंने मनवह मैंने मंत्रा, मनु का बहुवचन है मनवह, मनु मनु मनवह मंत्राः विद्येश्वराः इत्यर्थः, तेषु भी उत्तम, उनमें उत्तम कौन है, मनुत्तमः मंत्रेश्वर भवति योगी इति शेषः। केवल मनु को जानना वो विद्येश्वर है, उन विद्येश्वरों में भी जो उत्तम है वो मंत्रेश्वर है। वहां पर आया था ना मंत्र महेश्वर मंत्रेश्वर, उसके बाद विद्येश्वर कोटि है, उन विद्येश्वर तो निम्न कोटि, उसे श्रेष्ठ है मंत्रेश्वर, मंत्रेश्वर से भी मंत्र महेश्वर कोटि वाला, उसको विद्येश्वर से ऊपर का दो कोटि, जो उन दो कोटियों वाला में ये योगी आ जाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से ईश्वर तत्व में समावेश और ईश्वर तत्व ईश्वरीय वाणी के साथ समावेश करने में समर्थ होता है, ईश्वर तत्व जो समावेश कर लिया वो मंत्र महेश्वर हो गया, सर्वकर्तृत्व के साथ सर्व मंत्र ज्ञान उसको, केवल वाणी से समावेश करेगा वो मंत्र महेश्वर बनेगा, उसे सर्व कर्तृत्व नहीं है लेकिन सर्व मंत्र दर्शन सामर्थ्य। मंत्रेश्वराश्च भेदा भेद निष्ठेश्वर तत्व से प्राणिनः, आगे ना मंत्रेश्वर और कोई नहीं है, वो भेदा भेद निष्ठा में रखने वाला ईश्वर तत्व के योग्य प्राणी है, समझो। प्रमेय ममता आवेशात निर्विणोति नवम जगत, और प्रमेय में ममता का आवेश कर गया, प्रमेय कौन है, जगत के सकल पदार्थ, इस घटपट मठ इनके साथ तादात में कर लिया, समावेश कर गया। ये सब विभूति पाद जैसा है, ये जो कह रहे हैं जितने भी आप सुन रहे हैं ये योग सूत्र में जैसा विभूति पाद वर्णन किया, त्रय समय संयम का तीनों का एक साथ होना संयम है, अब इसमें संयम करोगे तो ये सिद्धि मिलेगी, इसमें संयम करोगे तो ये सिद्धि मिलेगी, वहां जैसे वर्णन कर रहे हैं वही यहाँ पर भी कर रहे हैं, आपने शिव में समावेश किया आप ऐसे सिद्ध पुरुष हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, आप उसमें समावेश करोगे तो ये हो जाएगा, वही यहाँ पर एक तरह से चल रहा है। अब प्रमेय, अब तक शिव में समावेश की बात चल रही थी, अब तक पहले चला शिव में समावेश कर रहा था या शक्ति में समावेश, उससे पूर्व अध्याय में शक्ति में समावेश की चर्चा चली थी शाक्तोपाय में भी, और अब कह रहे हैं कि वो उससे ऊपर नीचे आए, ईश्वर में समावेश आया, फिर ईश्वरीय वाणी में समावेश आया, ईश्वर के सृष्टि प्रमेयों में समावेश, उसे भी नीचे स्थूल में जा रहे धीरे धीरे धीरे, तो प्रमेय ममता आवेश निर्मणोति नवम जगत, वह नए नए जगत को भी निर्माण कर लेता है। इसकी व्याख्या कर देखो, प्रमेय मान जागत के निखिल पदार्थ, जगत के निखिल पदार्थों में ममता आवेश सर्वमिदम अहम एव इति तादात्म्या जैसा मैं हूं ऐसा मत कर रहा है स योगी नवम जगत नूतनाम सृष्टि निर्वणती रचेती नई सृष्टि को भी निर्माण कर सकता है यह सामर्थ्य उसके अंदर आ जाएगा। यह सामर्थ्य वाला कौन होगा? विज्ञान आकल वाला, विज्ञान आकल, क्योंकि इसको प्रमेय का विज्ञान है ना, प्रमेय का विज्ञान का पीछे गया हो उसके साथ समावेश कर गया, हर प्रमेय का ज्ञान कर तो उसमें समावेश हो गया, तो उसके लिए वो सामर्थ्य आ गया कि कुछ भी बना सकता है। सबका ज्ञान उसको है तो कुछ भी बना ले, ज्ञान जिसका है उस चीज को बनाओगे, जिसका ज्ञान नहीं है उसको बना नहीं सकते हैं। इदानीं पारमेश्वरम मायाः पंचसु कंचुकेषु तादात्म्य स्थापनात् प्राप्तां विभूतिं वर्णयति। और अब परमेश्वर की माया का पांच कंचुक है, पंच कंचुक परमेश्वर की माया का। अब माया जगत में आ रहे हैं, नीचे और उतर रहे हैं, और पांच कंचुक के साथ तादात्म करोगे, जिस कंचुक के साथ आप तादात्म समावेश करोगे उसके अनुरूप आपको एक सिद्धि मिलेगी। उसके पंच कंचुक कौन कौन है? कला, ये नहीं, सबसे पहली है कला, दूसरी है विद्या, तीसरी है राग, चौथी है काल, पांचवी है नियति। ये पंच कंचुक है, आगे दे रही है पर देखिए, तथा ही क्या क्या है वो? परमेश्वर माया परिणाम भूतानि कंचुक पंचकानि संति। परमेश्वर की माया का परिणाम भूता पांच कंचुक हैं। एक का नाम कला है, दूसरी विद्या, तीसरी राग, चौथा है काल, पांचवी नियति, नियतयश्च इति। तत्र परमेश्वर से सर्वकर्तृत्व संकोच्य तत्र किंचित कर्तुं रूप स्थापयंती कला। कला कर्ति क्या है? कंचुक का मतलब क्या? कंचुक का शब्द का सीधा साधार था की भाषा में कहो तो कोट, ऊपर से जो पहन रहे हैं शर्ट बुशर्ट कोई भी नाम लो, ऊपर से जो ओढ़ा जाए उसका नाम कंचुक है। जो परमात्मा अपनी माया से अपने ऊपर एक ओढ़न लगा ली, इसे ओढ़न का नाम कंचुक। परमेश्वर की माया के तरफ बनाया हुआ कंचुक के समान कंचुक है, ओढ़न के समान एक ओढ़नी है। ये पहली जो चादर उसने ओढ़ी है उसका नाम है कला। जैसे आप भी जब ओढ़ते हो तो अलग अलग नाम होते हैं ना, अंदर जब पहन उसका नाम क्या होता है? पहले बनियान, उसके ऊपर क्या हो गया? एक शर्ट पहन लिया, उसके ऊपर क्या पहन लिया जी? इसका नाम है जो स्वेटर, उसके ऊपर क्या पहनना? अरे उसका नाम कुछ और बोलते ना आजकल, जो मोटे मोटे पहनते जैकेट बोलते हैं, जैकेट बोलते हैं, और उसके ऊपर एक फर कोट डाल लिया। नहीं, अलग अलग नाम देते रहते हो आप भी, एक के ऊपर पहनते हो और उसका अलग अलग नाम रख देते हो, या नहीं? इसी तरह से यहां पर भी अलग अलग नाम है। पहला कोट का नाम परमेश्वरी माया का द्वारा रचित पहला कोट परमेश्वर, जो ढक रहा है परमेश्वर को, वो उसकी असली जो सर्वकर्तृत्व को ढकने की शक्ति है वो कला है। वो जो उससे सर्वशक्ति कर्तृशक्ति को घटा करके किंचित कर्तृत्व लाया, इसी का नाम है कला। सर्वकर्तृत्व संकोच, सर्वकर्तृत्व को संकोच करके तत्र किंचित कर्तृत्व स्थापयन्ति, किंचित कर्तृत्व स्थापना कर देती है कौन? कला। इसलिए आप इस कला के साथ समावेश करोगे तो क्या होगा? अपने अंदर जो किंचित कर्तृत्व है इसे कारण भी तो कला में जाओ, चिंतन करोगे उसे, इसके साथ तादात्म्य करोगे तो कला का कारण कौन है? माया में पहुंच जाओगे, माया से माया भी ईश्वर में पहुंच जाओगे, अपने आप ईश्वर को समासक्त हो जाओगे, तो आपकी जो किंचित कर्तृत्व जो कला के वजह से थी ये दूर होकर के आप पुनः सर्वकर्तृत्व को प्राप्त कर सकते। हर कंचुक अलग अलग काम है, देखिए। और विद्या का गांव काम है, यदा तो सर्वज्ञत्व संकुचितम भूतवा किंचित चक्त प्रणमते तदा सा विद्या। जो परमेश्वर की सर्वज्ञत्व है उसमें संकोच होकर के आपके अंदर किंचितज्ञता जो आ गई है, जो प्रणाम दिख रहा है, हम अल्पज्ञता दिख रही है हमारे अंदर, इसका पीछे कारण का नाम ही विद्या। यथा पूर्ण तृप्ति या पूर्ण तृप्ति च संकोचम उपनीय भोगेश आसक्ति क्रियते सा शक्ति ही राग। आप नित्य पूर्ण तृप्त पुरुष है, यह आत्मा नित्य पूर्ण तृप्त वाला है, पूर्ण आनंद रूप है ये। इन्हें जो पूर्ण तृप्ति थी उसमें संकोच लाया गया। संकोच कैसे लाया गया? एक ही तरीका थी, आप क्षुद्र विषयों में आसक्ति बढ़ा देना। जब क्षुद्र विषयों में आसक्ति बढ़ती है आप उन्हें पूर्ण तृप्ति को भूल जाते। यह आसक्ति का ही दूसरा नाम है राग। आजकल लोग खट राग बोलते हैं ना, खट राग। संगीत वाले छठ राग के लिए खट राग बोल देते हैं। छह राग है सारे गांव में, पता नहीं ठीक है नहीं, इसे छठ राग वाले लोग हैं। और यहां राग कहते दूसरा संकोच का कारण छठ राग है। वास्तव में वहां भी छठ राग क्या है? निराकार वाणी का संकोच, निराकार वाणी का राग विशेष में संकोच करना, इसलिए वह छठ राग कहा जाता है। और यहां वाणी का मात्र संकोच नहीं है, इनका कहना है पूर्ण तृप्ति का संकोच का नाम राग है। पूर्ण तृप्ति संकोच का कारणीभूत माया का विशेष स्वरूप का नाम है राग। कैसे करती है वो संकोच, वो अभी बता दिया इन्होंने। कैसे करती है? भोगों में आसक्ति लाती है। बस यही आसक्ति जो आई हुई भोगों में, इसी का नाम राग है। येन च तस्य नित्यत्वं त्रोभूयति, त्रोभूय अतीतादि रूपेण परिच्छिद्यते। येन च तस्य नित्यत्वं त्रोभूय अतीतादि रूपेण, अतीतादि रूप से परिच्छेद कर देता है सकाल। आप नित्य एक में अद्वितीय स्वरूप है। आप गए मैं पहले था, अब पहले मेरे जन्म हुए हैं, क्या मेरे जन्म हो रहा है, आगे पतन और जन्म होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे वर्तमान भूत भविष्य ये भेद पूर्वक हम चिंतन करने लगे। जो नित्य था वह तीन कालों से अपने आप को परिच्छिन्न कर ले रहा है। यह परिच्छिन्नता का कारणीभूत तत्व का नाम ही काल है। और अंत में आता है नियतिश्च तस स्वातंत्र व्यापकत्वं च संकोचयन्ति। व्यापकत्वं हो गया का जोड़ दो, व्यापकत्वं च संकोचयन्ति। उसकी नित्यता और व्यापकता, स्वातंत्रता और व्यापकता दोनों को संकोच करना। नित्यता को संकोच करने का नाम काल है, व्यापकता को संकोच करना और स्वातंत्र संकोच करना। कार्य कारण भाव आपाद्य, वे कैसे संकोच करेंगे? कार्य कारण भाव डाल दो, अपने आप उसकी व्यापकता खत्म। कार्य कारण भाव में आ जाने का मतलब आपने अपने आप को परिच्छिन्न कर दिया, व्यापकता खत्म हो गई, स्वतंत्रता भी खत्म हो गई आपकी। क्या आप निश्चय कर ले मिट्टी से घड़ा बनेगा? यहां आप तो बंद गए, फिर घड़ा आप अपने मर्जी से अपने बिना निरुपाधिक होकर के, बिना कोई उपादान कारण का संकल्प मात्र शब्द मात्र से पैदा करने की जो आपकी सामर्थ्य खत्म हो जाएगी। क्या आपने अपने आप को कार्य कारण में बांध लिया? मिट्टी से घड़ा बनेगा, इसलिए बिना मिट्टी का बना ही नहीं पाएंगे, फंस गए। और पहले योगी कैसे था? बिना मिट्टी का, बिना कुछ का, विचार आई घड़ा, बस घड़ा बन गया, निर्पादान सृष्टि। वह स्वतंत्रता भी जो थी सृष्टि की वो संकोच हो गया, और व्यापकता भी जो थी वो भी संकोच हो गया। इसका पीछे कारण है नियति, विशिष्ट देश न परिच्छिन्न, विशिष्ट देश के द्वारा आप अपने आप को परिच्छिन्न कर लिया, इसी का कारण है नियति। इनमें प्रत्येक में आप संयम करेंगे, समासक्त होंगे या आवेश करेंगे तो आप अलग अलग सिद्धियां मिलेंगी। किसमें आप आसक्त होंगे, किसमें समासक्त होंगे, किसमें आप जो है समावेश करने पर कौन सी सिद्धि मिलती है, क्या विशेष सामर्थ्य को प्राप्त होता है, वो अब श्लोक में बताने जा रहे हैं। कलने चिद घनत्वं स्याद् वेदने सर्वचिद गमः स्नेहे तु सर्वकामत्वं काला सर्वऋतुवर्तनम् नियमे सर्वयमनम् कैवल्यम् प्रलया कले। कला कलने मने कला, कलना कलनम कला, कला में यदि आपने समावेश कर लिया आप चित घनत्व की अनुभूति हो जाएगी। चित घनत्वम स्याद्, चित घन क्या? प्रज्ञान घन, सकल ज्ञान घन आप हो जाओगे। वेदने, और यदि वेदन में आपने समावेश किया, वेदन मने विद्या में, विद्या में समावेश कर क्या लाभ होगा? सर्वचिद गमः मने सकल ज्ञान का अधिगम हो जाए। पहले सर्वचित घन और अब सर्वचित गम, दोनों अलग है। सर्वचित गम क्या होता है? सकल ज्ञान अधिगम। और पहले फिर सर्वचित घन से क्या लोगे? ज्ञान रूपवत्तम लेना पड़ेगा, ये अंतर करना पड़ेगा। पहले वाले से आप ज्ञान रूप हो जाओगे और एक ज्ञान वाला हो जाओगे, दोनों में अंतर है। जैसे सर्वचित घनत्तम का अर्थ हो गया ज्ञान रूपवत्व यह अर्थ लेना है, और सर्वच गमह का अर्थ है सकल ज्ञान अधिगम होगा, ज्ञान वाला होगा। स्नेहे तो और राग में आपने समावेश कर दिया, तादात्म्य कर लिया, तो सर्व कामत्व माने सकल कामना उनको प्राप्त करने वाले हो जाओ, जो भी अभी कामना होगी प्राप्त हो जाए, बैठे बैठे ही सब कुछ प्राप्त होते रहे। इसी कोटि वाले लोग है ये सब, समावेश कर लिया है वो सामर्थ्य उसको प्राप्त हो गया। स्नेह तो राग में समय सर्व कामनाओं की प्राप्ति होगी, और कह दिया कालात सर्व ऋतु वर्तनम, और काल में समावेश करेगा तो क्या होगा, सर्व ऋतु वर्तनम सभी ऋतु होगा, योगी जो है उसके अगल बगल में घूमते फिरते रहेंगे, जो ऋतु चाहेगा वो ऋतु उसके सामने दिखने लगेगा, वो फल मिलेगा उस ऋतु का, जिस ऋतु का फल चाहेगा वो और फल मिल जाएगी, जो चाहेगा सो हो जाएगा, ऋतुओं पर उसका जो अधिकार हो जाता है। और नियति पर संयम करेगा तो सर्वयमनाम सारे दुनिया का नियमन करने में समर्थ हो जाएगा, शेर आ रहा है उसको ठंडा कर देगा, शांत कर सकता है, नियमन करे उसको नियंत्रण अंदर से कर देगा, ये सामर्थ्य उसके अंदर आता है। कैवल्यम प्रलयाकले, और प्रलयाकले नियमन प्रयाकल्प पुरुषों में नियमन करेगा तो वह कैवल्य को ही प्राप्त,